नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देने के लिए बृहस्पतिवार को सहमत हो गए, जिसके साथ देश में एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट का अंत हो गया। अब पार्टी के नए नेता का चुनाव होगा, जो नए प्रधानमंत्री होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के एक सम्मेलन में नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी होने तक जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रभारी बने रहेंगे। पार्टी का सम्मेलन अक्टूबर में होने का कार्यक्रम है। उनके द्वारा बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा करने की उम्मीद है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास सह कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री आज देश के नाम एक बयान जारी करेंगे। कई दिनों तक चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये कदम उठाया गया है। जॉनसन के मंत्रिमंडल के कई सदस्य मंगलवार से इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कंधे और पैर में चोट लगने की वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सुधार अधिक न होने के चलते उन्हें पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने को लेकर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि एम्स के डॉक्टर लालू प्रसाद की बीमारियों की हिस्ट्री पहले से जानते हैं, इसीलिए उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है। बता दें कि लालू यादव की हालत और खराब होने के पीछे दवाओं का ओवरडोज बताया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि लालू यादव के शरीर में आज सुबह तक किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं पाया गया, एक तरह से उनका शरीर लॉक हो गया है। बढ़ती समस्याओं के चलते दिल्ली एम्स में डॉक्टरों ने लालू यादव की तमाम जाँच की। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के समर्थक उनके स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे में पटना के कई मंदिरों में उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका लग रहा है। बता दें कि अब ठाणे नगर निगम पर उद्धव ठाकरे का नियंत्रण नहीं रहा है। दरअसल ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये उद्धव गुट के लिए तगड़े झटके के समान है। इससे पहले शिंदे गुट में जाने वाले 66 पार्षदों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बुधवार को मुलाकात की थी। बता दें कि उद्धव ठाकरे लगातार अपने गुट में इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उनका गुट कार्यकर्ता और संगठन के मामले में अब भी मजबूत है। सिर्फ बागी विधायक ही शिंदे गुट में गए हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती दिख रही हैं। उद्धव के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में मंत्री रहे गुलाब राव पाटिल ने दावा किया है। शिवसेना के बागी खेमे में 55 में से 40 विधायक हैं और 18 में से 12 सांसद भी हैं। इनमें से 4 सांसदों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। इसके अलावा हमारे साथ 22 पूर्व विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश में बकरीद मनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जाए। बता दें कि 9 या 10 जुलाई को बकरीद है, जिसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और बकरों की बिक्री हो रही है। लाखों रुपए में बकरे खरीदे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से सबसे महंगा बकरा बिका है। बताया जा रहा है कि यहां 7 लाख रुपए में एक बकरे की बिक्री हुई। इस बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा फरमान जारी किया। सीएम योगी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि बकरीद और श्रावण मास कांवड़ यात्रा समेत आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सतर्क और सावधान रहना होगा। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शरारतपूर्ण भाषण देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति अपनाई जाए। इसके अलावा अराजकता फैलाने वालों के साथ भी कठोरता से निपटा जाए। चीन ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने से परहेज करते हुए तिब्बत से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मोदी ने बुधवार को 87 वर्ष के होने पर दलाई लामा को फोन पर बधाई दी। मोदी ने बुधवार को ट्वीट किया, फोन पर दलाई लामा से बात कर उन्हें 87वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हम उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। दलाई लामा के अनुयायियों ने धर्मशाला में उनका जन्मदिन मनाया, जहां दलाई लामा निर्वासन में रहते हैं। मोदी की शुभकामनाओं पर एक सवाल को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारतीय पक्ष को 14वें दलाई लामा के चीन विरोधी अलगाववादी स्वभाव को पूरी तरह से पहचानना चाहिए। झाओ ने कहा, चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए, समझदारी से बोलना और कार्य करना चाहिए तथा चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।